कल्पना कीजिए, एक अदालत का दृश्य है। एक आदमी कटघरे में खड़ा है, पसीने से तरबतर। वो जज के सामने गिड़गिड़ा रहा है और अपने टूटे हुए पैर के लिए भारी मुआवजे की मांग कर रहा है।
और वो चिल्ला रहा है कि उसे न्याय चाहिए, है ना?
बिल्कुल, वो चिल्ला रहा है कि उसे न्याय चाहिए। लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा मजाक ये है कि उस आदमी पर कोई मुकदमा चल ही नहीं रहा है।
वो कोई क्रिमिनल या वादी है ही नहीं।
हाँ, वो तो उस पूरी घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह है। मतलब दुनिया की सबसे पुरानी और मशहूर किताबों में से एक को पढ़ते समय इंसानियत हजारों सालों से बिल्कुल यही गलती कर रही है।
सही कहा।
तो आज के इस गहन चर्चा में हम प्राचीन दुनिया और पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टमेंट की सबसे रहस्यमयी किताब की तहों को खोलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बुक ऑफ जॉब की।
और देखिए, ये किताब कोई साधारण प्राचीन ग्रंथ नहीं है। अगर हम पूरे प्राचीन साहित्य को उठाकर देख लें तो इसकी जैसी कोई दूसरी किताब ढूंढना लगभग असंभव है।
बिल्कुल अलग है ये।
हाँ, ये अपने आप में बिल्कुल अलग है और शायद इसीलिए मतलब इसे इतिहास में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है।
और इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आज हम एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत का सहारा ले रहे हैं। हम डॉक्टर जॉन वॉल्टन के बेहद शानदार और गहराई से भरे व्याख्यान पर चर्चा करेंगे।
डॉक्टर वॉल्टन का अनुभव कोई छोटी बात नहीं है। वो वीटन कॉलेज में 15 सालों से पढ़ा रहे हैं।
हाँ, और उससे पहले मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट में 20 साल तक शिक्षा दी है।
बिल्कुल, और उन्होंने अपनी PhD हिब्रू यूनियन कॉलेज से की है। मतलब वो एक ऐसे विद्वान है जो मूल प्राचीन भाषाओं की नस नस से वाकिफ है।
तो हमारा मिशन आज ये है कि इस किताब को लेकर लोगों के दिमाग में जो झूठी उम्मीदें और गलत धारणाएं बैठी हैं, उन्हें हम जड़ से उखाड़ फेंके। चलो इसे विस्तार से समझते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है?
देखिए, शुरुआत में ही सबसे बड़ी समस्या हमारी अपनी उम्मीदों से पैदा होती है। जब लोग कोई धार्मिक या प्राचीन किताब उठाते हैं तो पहले से ही तय कर लेते हैं कि ये उन्हें क्या सिखाने वाली है।
मतलब लोग सीधा जवाब ढूंढने जाते हैं।
हाँ, और जब बुक ऑफ जॉब मन चाहे जवाब नहीं देती तो लोग खींच जाते हैं। डॉक्टर वॉल्टन का कहना है कि इसके अर्थ और दर्शन की गहराई में उतरने से पहले ही हमें एक ऐसी बाधा को पार करना होता है जो अच्छे अच्छे विद्वानों के पसीने छुड़ा देती है।
अच्छा, वो क्या है?
वो है इस किताब की मूल भाषा।
भाषा? एक मिनट, हम यहाँ एक अनुवादित किताब की कहानी और उसके संदेश की बात करने वाले हैं, तो ये प्राचीन भाषा की चर्चा बीच में कहाँ से आ गई?
ये बहुत जरूरी है।
क्या ये सिर्फ एक बहुत पुरानी हिब्रू होने की वजह से मुश्किल है?
नहीं, ये सिर्फ पुरानी होने का मामला नहीं है। पूरे पुराने नियम में बुक ऑफ जॉब की हिब्रू भाषा को सबसे ज्यादा जटिल और कठिन माना जाता है। अनुवादकों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
बाप रे।
जरा इस बात पे गौर कीजिए, डॉक्टर वॉल्टन बताती हैं कि इस किताब में ऐसे ढेरों शब्द हैं जो पूरी हिब्रू बाइबल में केवल एक ही बार इस्तेमाल हुए हैं।
रुको रुको, केवल एक बार? मतलब पूरी बाइबल में वो शब्द दोबारा कहीं और आया ही नहीं है?
बिल्कुल नहीं। इसे भाषा विज्ञान में हैपक्स लेगुमेना कहते हैं।
तो फिर अनुवादों को पता कैसे चलता है कि उस शब्द का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई ऐसा शब्द है जिसका कोई दूसरा संदर्भ भी मौजूद नहीं है तो मैं तो बस तुक्का ही मारूंगा ना।
यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। अनुवादों को अक्सर संदर्भ देखकर अंदाजा लगाना पड़ता है या फिर उसी दौर की दूसरी भाषाओं जैसे अरामी या प्राचीन अरबी के शब्दों से उसकी तुलना करनी पड़ती है।
मतलब ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है।
बहुत ज्यादा। और इसके अलावा इस किताब का वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स भी इतना उलझा हुआ है कि एक ही वाक्य के कई मतलब निकाले जा सकते हैं।
ये तो कुछ कुछ वैसा ही हो गया जैसे मान लीजिए खुदाई में कोई प्राचीन मेडिकल जर्नल मिल जाए।
हाँ।
अब उस जर्नल के आधे पन्ने दीमक खा चुके हैं
और जो पन्ने बचे हैं उनमें ऐसी बीमारियों और जड़ी बूटियों के नाम लिखे हैं जो आज अस्तित्व में ही नहीं है।
एकदम सही। तो जो भी व्यक्ति उसे आज पढ़ेगा वो शायद सोचेगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है या फिर इसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर लिखकर बस एक साथ स्टेपल कर दिया है।
बिल्कुल।
मेरा मतलब है अगर मुझे आज कोई ऐसी किताब मिले जिसकी भाषा इतनी उलझी हुई हो तो मैं तो यही कहूंगा कि इसका कोई एक लेखक हो ही नहीं सकता। इसे महज खराब तरीके से संपादित किया गया है।
और आपको पता है ये संदेह बहुत से लोगों को हुआ है।
जी।
कई आधुनिक विद्वानों ने अतीत में ये दावा भी किया कि बुक ऑफ जॉब एक पैबंद लगी रजाई की तरह है।
पैचवर्क क्विल्ट?
हाँ।
अच्छा।
हाँ, उनका मानना था कि कुछ हिस्से एक सदी में लिखे गए, कुछ दूसरी सदी में, और बाद में किसी संपादक ने उन्हें जबरदस्ती जोड़ दिया, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन ने अपने अध्ययन से इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
तो उनका मानना है कि ये कोई फ्रैंकस्टाइन का मॉन्स्टर नहीं है जिसे अलग अलग टुकड़ों से जोड़ा गया हो।
बिल्कुल नहीं, डॉक्टर वॉल्टन साबित करते हैं कि ये एक सुसंगत और एकीकृत ग्रंथ है।
मतलब यूनिफाइड है।
हाँ, इसकी जटिलता इसलिए नहीं है कि इसे अलग अलग लोगों ने लिखा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि लेखक ने इसे एक बेहद उच्च स्तर के साहित्यिक ढांचे के साथ गढ़ा है।
तो ये किसी बहुत बड़े कवि या दार्शनिक की उत्कृष्ट रचना है।
एकदम सही, और यहीं से हमारी वो दूसरी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। भाषा की इस उलझन और कहानी की गहराई को न समझ पाने के कारण हम किताब के मुख्य पात्र यानी जॉब की स्थिति को ही गलत समझ बैठते हैं।
वही अदालत वाला उदाहरण।
हाँ।
तो क्या जॉब सच में ये सोच रहा है कि उस पर मुकदमा चल रहा है?
देखिए, कहानी के अंदर की स्थिति को समझिए। जॉब ने अपना सब कुछ खो दिया है, उसका परिवार, उसकी संपत्ति, उसका स्वास्थ्य,
सब कुछ खत्म हो गया उसका।
हाँ, वो राख में बैठा है और उसके शरीर पर फोड़े निकले हुए हैं, और उसके तीन दोस्त आकर उसे सांत्वना देने के बजाय ये समझा रहे हैं कि उसने जरूर कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, तभी भगवान उसे ये सजा दे रहे हैं।
मतलब उसके दोस्त कह रहे हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तुमने कुछ तो गलत किया है।
बिल्कुल। तो इस पूरी स्थिति में जॉब खुद को एक प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट मान बैठता है। उसे लगता है कि ईश्वर जज है और उन्होंने उसे किसी अज्ञात अपराध के लिए दोषी करार देकर सजा सुना दी है,
और वो अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा है।
सिर्फ बेगुनाही नहीं, जॉब यहाँ एक बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं निर्दोष हूँ, वो स्थिति को पलट कर खुद को एक वादी के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, प्लेंटिफ की तरह।
मतलब वो ईश्वर पर मुकदमा करना चाहता है।
वो दावा करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, ईश्वर ने उसे गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है और उसे इसका स्पष्टीकरण या न्याय मिलना चाहिए।
ये तो सच में बहुत अजीब है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अदालत में ये सोचकर जाए कि उस पर खिड़की तोड़ने का मुकदमा चल रहा है।
हाँ।
और फिर वो उल्टे अदालत से अपने टूके हुए पैर के लिए पैसे मांगने लगे, जबकि असल में जज उसे सिर्फ ये बताने के लिए बुला रहा है कि उसने सड़क पर क्या देखा था।
एकदम सटीक उदाहरण है ये। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम जो इस किताब को बाहर से पढ़ रहे हैं, ये बात जानते हैं कि जॉब ना तो प्रतिवादी है और ना ही वादी।
वो दरअसल बचाव पक्ष का मुख्य गवाह है, है ना, स्टार विटनेस।
बिल्कुल। ब्रह्मांडीय स्तर पर जो अदालत लगी है उसमें जॉब पर मुकदमा नहीं चल रहा है, बल्कि जॉब के माध्यम से कुछ और ही साबित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जॉब को ये बात कभी पता ही नहीं चलती।
बाप रे, वो पूरी किताब में इसी भ्रम में रहता है।
हाँ।
एक मिनट, अगर जॉब केवल एक गवाह है और उससे पता ही नहीं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, तो फिर इस पूरी कहानी का असली नायक कौन है? अगर अदालत जॉब के बारे में नहीं है तो फिर ये पूरी बहस किस लिए है?
यही वो बात है।
लोग तो हमेशा यही मानकर चलते हैं ना कि ये किताब पूरी तरह से जॉब के बारे में है।
और यही वो मोड़ है जहां हमें अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। डॉक्टर वॉल्टन स्पष्ट करते हैं कि ये किताब जॉब के बारे में नहीं बल्कि ईश्वर के बारे में है।
ईश्वर के बारे में?
हाँ। हम अक्सर सुनते हैं जॉब जैसा धैर्य या जॉब जैसी सहनशीलता, लोग उसे पीड़ा सहने का एक आदर्श या रोल मॉडल मान लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन रुको, मैं यहाँ आपसे पूरी तरह असहमत हूँ। अगर ये किताब ईश्वर के बारे में है और जॉब कोई रोल मॉडल नहीं है, तो फिर लेखक ने इस किताब का नाम ही बुक ऑफ जॉब क्यों रखा?
मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट।
क्या ये प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग विफलता नहीं है? मतलब अगर मुझे एक किताब लिखनी है जो पूरी तरह से भगवान के इर्द गिर्द घूमती हो, तो मैं उसका नाम मुख्य गवाह के नाम पर क्यों रखूंगा?
देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राचीन विजडम लिटरेचर यानी ज्ञान साहित्य ऐसे ही काम करता है। ये कोई ऐतिहासिक जीवनी या आत्मकथा नहीं है। जॉब एक माध्यम है, एक केस स्टडी है।
अच्छा, केस स्टडी की तरह?
हाँ। जब आप कोई केस स्टडी पढ़ते हैं तो आप उस व्यक्ति की जिंदगी नहीं सीख रहे होते, आप उस स्थिति से पैदा होने वाले सिद्धांतों को सीख रहे होते हैं। जॉब के कुछ जवाब बहुत अच्छे हैं और कुछ बेहद खराब और कड़वे हैं।
मतलब हमें जॉब की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी है?
नहीं, ये किताब ये नहीं सिखाती कि पीड़ा के बारे में कैसे सोचें या चुपचाप कैसे सहें।
तो फिर क्या सिखाती है?
इसका असली उद्देश्य ये सिखाना है कि जब हम गहरी पीड़ा और संकट में हों, तब हम ईश्वर के बारे में कैसे सोचें।
मतलब क्या हम उन्हें दोष देते हैं या गुस्सा होते हैं?
बिल्कुल। जब जिंदगी में सब कुछ तबाह हो रहा हो, तब क्या हम दूर भागते हैं या हम अपना भरोसा बनाए रखते हैं?
अच्छा, अगर ये किताब ईश्वर के बारे में है तो हम ईश्वर के किस गुण के बारे में सीख रहे हैं? क्योंकि जब भी दुनिया में कोई भयानक घटना होती है या किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा होता है तो सुनने वालों के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ईश्वर का न्याय कहाँ है।
और यहीं पर डॉक्टर वॉल्टन एक ऐसा विचार सामने रखते हैं जो बहुत से लोगों को असहज कर सकता है। हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि ये किताब ईश्वर के न्याय का बचाव करती है,
है ना,
जस्टिस।
हाँ।
लेकिन सच तो ये है कि ये किताब ईश्वर के न्याय का बचाव नहीं करती, बल्कि उनके ज्ञान का बचाव करती है, विजडम का।
ज्ञान का बचाव, न्याय का क्यों नहीं?
क्योंकि अगर आप किताब के अंत में जाते हैं, जहां 40 अध्यायों की लंबी बहस के बाद अंततः ईश्वर बोलते हैं, तो वो कभी भी अपने न्याय को स्पष्ट नहीं करते।
वो नहीं बताते कि ये ऐसा क्यों हुआ।
नहीं, वो जॉब को ये नहीं बताते कि जो हुआ वो न्यायसंगत कैसे था। वो शैतान के साथ हुई शर्त का कोई जिक्र नहीं करते।
एक मिनट, आप कह रही हैं कि हम 40 अध्यायों तक एक आदमी को अपना परिवार, अपनी दौलत और अपनी सेहत खोते हुए देखते हैं, वो चीख चीख कर जवाब मांगता है।
हाँ।
और अंत में ईश्वर आकर मूल रूप से बस इतना कहते हैं कि मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मुझसे सवार मत पूछो। ये तो बहुत ही निराशाजनक बात है।
मुझे पता है ये कैसा लगता है।
मतलब अगर हम इतनी लंबी किताब पढ़ें और अंत में हमें ये भी ना पता चले कि जो हुआ वो सही था या गलत, तो ये तो पाठकों के साथ धोखा हुआ। ये एक संतोषजनक निष्कर्ष कैसे हो सकता है?
देखिए, ये निराशाजनक इसलिए लगता है क्योंकि हम न्याय को इंसानी नजरिए से देख रहे हैं। डॉक्टर वॉल्टन यहाँ एक बहुत ही गहरी दार्शनिक बात समझाती हैं। न्याय क्या है?
सही और गलत का फैसला।
हाँ, लेकिन किसी भी मामले में न्याय हुआ है या नहीं, ये तय करने के लिए आपके पास सारी जानकारी, सारे सबूत होने चाहिए, एविडेंस होना चाहिए।
जैसे एक कोर्ट रूम में जज और जूरी के पास होते हैं।
बिल्कुल। लेकिन अदालत के बाहर खड़ी आम जनता के पास वो सबूत नहीं होते। आम जनता सिर्फ अखबारों की सुर्खियां पढ़कर या अफवाहें सुनकर न्याय या अन्याय तय कर लेती है।
ये तो आजकल रोज ही होता है,
है ना? ईश्वर द्वारा चलाए जा रहे इस ब्रह्मांड के मामले में हम सब उस अदालत के बाहर खड़ी आम जनता की तरह हैं। हमारे पास कभी भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम उस स्थिति में है ही नहीं कि हम ईश्वर के न्याय का आकलन कर सके।
अच्छा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। कंटिनजेंसी या निर्भरता का एक शब्द आता है दर्शन शास्त्र में।
बिल्कुल।
मुझे लगता है वो यहाँ बहुत फिट बैठता है। क्या आप इसे समझा सकती हैं?
बिल्कुल। कंटिनजेंसी का मतलब है कि क्या कोई चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर है। मान लीजिए एक आधुनिक लोकतांत्रिक देश का राजा या प्रधानमंत्री है, क्या वो कुछ भी कर सकता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
उसे देश के संविधान के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। यानी राजा संविधान के अधीन है, संविधान राजा से ऊपर है।
ठीक है, समझ गया। मतलब उसकी पावर लिमिटेड है।
हाँ। अब जब हम कहते हैं कि ईश्वर को न्याय करना चाहिए, तो अनजाने में हम ये मान लेते हैं कि न्याय नाम का कोई बाहरी नियम, कोई संविधान या मानक है जिसका पालन करना ईश्वर की मजबूरी है।
ओहो, मतलब हम ये कह रहे हैं कि न्याय नाम की चीज ईश्वर से भी ऊपर है और ईश्वर उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं।
बिल्कुल। लेकिन ईश्वर किसी बाहरी चीज पे निर्भर नहीं है, वो किसी बाहरी कानून के गुलाम नहीं है। न्याय उनसे उत्पन्न होता है, वो न्याय के अधीन नहीं है।
तो इस सबका क्या मतलब है?
मतलब ये है कि हम ईश्वर के न्याय को अपने सीमित और इंसानी तराजू पर नहीं तोल सकते, क्योंकि वो तराजू ही ईश्वर ने बनाया है। जब हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं होती, तो हमें उनके न्याय की नहीं, बल्कि उनके असीमित ज्ञान की शरण में जाना पड़ता है।
बाप रे, ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है कि हम लगातार न्याय की मांग करते हैं, ये सोचे बिना कि न्याय को परिभाषित करने की हमारी क्षमता ही कितनी छोटी है।
हाँ, हमारी सोच बहुत सीमित है।
तो ये तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति 3 घंटे की किसी फिल्म का केवल 10 सेकंड का क्लिप देखे और फिर उस फिल्म की कहानी को बकवास घोषित कर दे, क्योंकि उसके पास पूरी तस्वीर ही नहीं है।
एकदम सही।
लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, अगर हम ईश्वर के न्याय को समझ नहीं सकते, अगर हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं है और अगर ये किताब हमें हमारे तीखे सवालों के सीधे जवाब नहीं देती, तो फिर ये सब पीड़ा और दुख किस लिए है? इस किताब का आखिर मकसद क्या है? अगर भगवान जवाब नहीं देने वाले, तो फिर अच्छे इंसान बने रहने का क्या फायदा?
और ये हमें डॉक्टर वॉल्टन की चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ले आता है। देखिए, ये किताब जवाब पाने के बारे में है ही नहीं, ये भरोसा करने के बारे में है, ट्रस्ट।
भरोसा?
हाँ, जरा सोचिए, अगर आपको हर चीज का जवाब पता हो, अगर आपको पता हो कि आपके जीवन में कल क्या होगा और वो घटना क्यों घटेगी, तो क्या आपको कभी किसी पर भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी?
बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पास सारी जानकारी है तो फिर भरोसा कैसा? भरोसा तो तभी किया जाता है जब आप अंधेरे में हो, जब आपको रास्ता ना दिख रहा हो और आप किसी का हाथ पकड़कर चल रहे हो।
एकदम सही बात है। जब हम अज्ञानी होते हैं, भ्रमित होते हैं, जब जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा होता है और हमारे पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं होता, तब हमें भरोसे की आवश्यकता होती है।
सही बात है।
और अंततः ये पूरी किताब इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है कि सच्ची धार्मिकता क्या है, राइचियसनेस। कहानी की शुरुआत याद है? शैतान ईश्वर से क्या सवाल पूछता है?
वो पूछता है कि क्या जॉब बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी सेवा करता है?
हाँ, शैतान का सीधा सा दावा है कि जॉब सिर्फ इसलिए धार्मिक और अच्छा इंसान है क्योंकि ईश्वर ने उसे बहुत सारी संपत्ति, अच्छा परिवार और सुरक्षा की एक दीवार दे रखी है।
अच्छा, मतलब वो कह रहा है कि फायदे के लिए कर रहा है वो सब,
के प्रति उसका प्रेम हवा में उड़ जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इस बात पर प्रहार है कि इंसान का ईश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। क्या ईश्वर हमारे लिए कोई वेंडिंग मशीन है?
वेंडिंग मशीन मतलब हमने ऊपर से प्रार्थना, धार्मिकता और अच्छे कर्मों का एक सिक्का डाला, मशीन का बटन दबाया और नीचे से समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी का एक पैकेट बाहर आ गया।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही।
मैंने 10 दिन उपवास रखा, फिर भी मैं बीमार क्यों पड़ गया?
क्या यही मानसिकता?
बिल्कुल यही मानसिकता। हम में से बहुत से लोग शायद अवचेतन रूप से यही मानते हैं। हम ईश्वर के साथ एक लेन देन का रिश्ता रखते हैं, ट्रांजैक्शनल। लेकिन ईश्वर कोई वेंडिंग मशीन नहीं है। ये किताब हमें सिखाती है कि पीड़ा कोई सजा नहीं है।
तो अगर ये सजा नहीं है तो फिर क्या है?
पीड़ा केवल ये परखने का एक तरीका है, एक भट्टी है जो ये टेस्ट करती है कि क्या हमारी धार्मिकता असली है या वो सिर्फ फायदों के लिए किया गया एक दिखावा है। इसका मतलब है कि पीड़ा वो भट्टी नहीं है जिसमें अपराधियों को जलाकर सजा दी जाती है, बल्कि पीड़ा वो आग है जो ये साबित करती है कि हमारा सोना असली है या फिर उस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है।
बहुत खूब।
मतलब अगर आग में जाने के बाद रंग उतर गया तो उसका मतलब वो सिर्फ दिखावा था, स्वार्थ था, वेंडिंग मशीन वाला रिश्ता था। लेकिन अगर वो आग से और निखर कर बाहर आया तो वो सच्ची धार्मिकता है।
एकदम सही कहा आपने। जॉब की कहानी के अंत तक आते आते हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं क्यों पीड़ित हूँ या ईश्वर ने मेरे साथ न्याय क्यों नहीं किया, बल्कि हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या मैं सच में धार्मिक हूँ।
ये बहुत गहरा सवाल है,
है ना? क्या मेरा ईश्वर पर भरोसा तब भी टिका रहेगा जब मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा, जब मेरे सारे सुख छिन जाएंगे? क्या मेरी नेकी और मेरा विश्वास बिना किसी शर्त के है?
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो डॉक्टर वॉल्टन का विश्लेषण हमारे सामने एक बिल्कुल नया परिदृश्य तैयार कर देता है। हमने देखा कि भाषा की जटिलता हमें कैसे भटका सकती है। हमने समझा कि जॉब उस ब्रह्मांडीय अदालत में कटघरे में नहीं है, बल्कि वो एक गवाह है जिसे खुद इस बात का पता नहीं है।
बिल्कुल।
और हमने ये भी जाना कि ये किताब जॉब की महानता या उसके धैर्य के बारे में नहीं, बल्कि ईश्वर की गहराई और उनके स्वभाव के बारे में है। ये ईश्वर के न्याय को हमारे इंसानी तराजू पर साबित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनके असीम ज्ञान की ओर इशारा करती है जिसके लिए हमारे पास कभी पूरी जानकारी नहीं हो सकती।
एकदम सही सारांश है ये।
और ये हमें ये नहीं सिखाती कि पीड़ा के कारण कैसे खोजें, बल्कि ये सिखाती कि पीड़ा के समय जब सारे जवाब खत्म हो जाएं, तब ईश्वर के साथ अपना नाता कैसे बनाए रखें। ये जवाबों की किताब नहीं, बल्कि अंधेरे में भरोसा करने की किताब है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक सवाल पूछती है कि क्या हमारी धार्मिकता सच में बिना किसी स्वार्थ के है।
और देखिए, ये बात आज की दुनिया में और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। आज के सूचनाओं से भरे दौर में, जहां हम हर चीज को गूगल कर सकते हैं, जहां सुनने वालों को हर घटना का कारण और लॉजिक तुरंत चाहिए होता है, वहां बुक ऑफ जॉब हमें रुकने के लिए कहती है।
हाँ, एक पॉज लेने को कहती है।
बिल्कुल। यह हमें सिखाती है कि जीवन की उथल पुथल को एक नए नजरिए से देखना जरूरी है। जब जिंदगी मुश्किल हो जाए, जब कुछ भी समझ में ना आए, तो जवाब ढूंढने की जिद में खुद को खत्म करने के बजाय ये किताब हमें अपने भरोसे की नींव को मजबूत करने का रास्ता दिखाती है।
ये सच में हमारी सोच को झकझोड़ने वाला है। हम आज एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पूरी तरह से लेन देन या ट्रांजैक्शन पर टिकी हुई है। हम दफ्तर में काम करते हैं तो हमें वेतन मिलता है, हम सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा पोस्ट करते हैं तो हमें लाइक्स की उम्मीद होती है।
हाँ, हर चीज का एक रिटर्न चाहिए।
बिल्कुल, हम समाज में दान देते हैं या अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें। हर रिश्ते में, हर काम में एक छिपा हुआ स्वार्थ है।
सही बात है।
तो अंत में श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ना स्वाभाविक है, क्या आज के इस आधुनिक, तेज तर्रार और कहीं ना कहीं स्वार्थी समाज में बिना शर्त धार्मिकता जैसी कोई चीज वास्तव में संभव भी है? क्या हम सिर्फ इसलिए सही काम कर सकते हैं क्योंकि वो सही है, बिना किसी इनाम या फायदे की उम्मीद के? या क्या इंसानियत ने अनजाने में ही सही ईश्वर को, ब्रह्मांड को या नियति को महज एक बड़ी सी वेंडिंग मशीन मान लिया है? शायद अगली बार जब जीवन में कुछ ऐसा हो जिसका कोई सिरा समझ ना आए, बिल्कुल उस प्राचीन मेडिकल जर्नल की तरह जिसके पन्ने गायब हों, तब हमें जवाब खोजने की बजाय बस उस असीम ज्ञान पर भरोसा करना होगा जो हमारी छोटी सी समझ से बहुत परे है।